Welcome to our special program, Lok Nirnay 2024, in which we will be connecting with our correspondents across the country today and have an insightful discussion and analysis of the results of Lok Sabha elections and assembly elections to Odisha and Andhra Pradesh with our expert. I am Anubha Rohatgi with my co-anchor, Vishal Sharma.
Namaskar, Vishesh Karyakram Lok Nirnay 2024 mein aap sabhi ka swagat. लोकसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं और हम आज कार्यक्रम में लोकसभा और ओडिशा और आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजों का विश्लेषण करेंगे और साथ ही साथ स्टूडियो में हमारे साथ जो विशेषज्ञ हमारे साथ मौजूद हैं उनके साथ भी हम इन सभी बातों पर चुनाव से जुड़ी और परिणामों से जुड़ी बातों पर सभी चर्चा करेंगे और साथ ही साथ हम अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास भी जाएंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके का अब वहां पर राजनीतिक समीकरण बन रहे हैं। और हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं राजनीतिक विश्लेषक प्रफुल्ल केतकर। प्रफुल्ल केतकर जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत।
नमस्कार।
और सबसे पहले नजर डाल लेते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। राजनीतिक दलों ने लोकसभा चुनाव के परिणामों की घोषणा के बाद सरकार गठन के प्रयास तेज कर दिए हैं। 543 सदस्यों वाली लोकसभा के चुनाव में भाजपा के नेतृत्व वाले गठबंधन को 292 सीटें मिली हैं। भाजपा ने अकेले 240 सीटें हासिल की हैं। तेलुगुदेशम पार्टी को 16 और जनता दल यूनाइटेड को 12 सीटें मिली हैं। INDI गठबंधन ने 233 सीटों पर कामयाबी हासिल की है। अन्य के खाते में 18 सीटें गई हैं। कांग्रेस को 99 सीटों पर जीत मिली है। समाजवादी पार्टी ने 37 सीटें जीती हैं, जबकि तृणमूल कांग्रेस ने 29 और DMK ने 22 सीटों पर विजय हासिल की है।
President Draupadi Murmu has dissolved the 17th Lok Sabha today. Earlier, the Union Cabinet in its meeting held this afternoon advised the President to dissolve the 17th Lok Sabha with immediate effect.
एनडीए नेताओं की आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास पर बैठक हुई। ये बैठक लोकसभा चुनाव में एनडीए की जीत के बाद केंद्र में नई सरकार बनाने के लिए आगे की कार्रवाई की रूपरेखा तैयार करने के संदर्भ में हुई। बैठक में तेलुगुदेशम पार्टी के प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू, जनता दल यूनाइटेड के प्रमुख और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान और एनडीए घटक दलों के अन्य नेता भी उपस्थित थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की और केंद्रीय मंत्रिपरिषद का इस्तीफा उन्हें सौंप दिया। राष्ट्रपति ने इसे स्वीकार कर लिया है। उन्होंने नई सरकार बनने तक प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रिपरिषद से पद पर बने रहने का अनुरोध किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से भी मुलाकात की।
In Odisha, political activities have gained momentum following the victory of the BJP in the state assembly elections, where the party won 78 of the 147 seats. The ruling Biju Janata Dal BJD faced a shocking defeat, securing only 51 seats, while the Congress won 14 seats and 4 went to others. Following his party's defeat, BJD Chief and Odisha Chief Minister Naveen Patnaik today submitted his resignation to Governor Raghuvar Das at the Raj Bhavan in Bhubaneswar. Meanwhile, state BJP leaders are in meeting in Bhubaneswar to discuss formation of the state government and also on the name of the first BJP chief ministerial candidate. Odisha is going through a phase of political transition of power after the defeat of the BJD at the hands of BJP in the just concluded assembly elections. Chief Minister of Odisha and BJD Supremo Naveen Patnaik today submitted his resignation. Mr. Patnaik is the longest serving chief minister of Odisha, who served for 5 consecutive terms spreading over 24 years and 3 months. He first took the oath of chief minister's office of Odisha on 5th March 2000. In 2000, the Biju Janata Dal faced a shocking defeat at the hands of BJP, which has won 78 of the 147 seats in the Odisha Assembly, comfortably surpassing the magic figure of 74. Meanwhile, all eyes are on BJP for the chief ministerial phase. Former union minister and 6-time MP Jual Oram is one of the front runners. Senior BJP leader and Maharashtra Deputy Chief Minister Devendra Fadnavis has taken full responsibility for the party's unsatisfactory performance in the state. He offered to resign from the post of Deputy Chief Minister and said that if the central leadership permits, he will resign from the post. He said that after the resignation, he will be able to utilize his time for campaigning for upcoming assembly elections in the state. While analyzing the vote share of the BJP in the state, he said in 2019, the party secured 27.84% votes, while in 2024, the party's vote share is 26.17%. In 2019, the BJP succeeded in winning 23 parliamentary seats, while in 2024, the BJP has won 9 seats. Quoting reasons for the loss, Fadnavis said, "We failed to fully counter the narrative of constitution change, farmers' resentment, Maratha reservation, anti-incumbency and lack of coordination with other parties of Mahayuti are the other reasons for unsatisfactory performance." BJP State President Chandrasekhar Bavankole said that he will request the central leadership to keep Fadnavis in the state government. He is capable of managing government and party organizations. Maharashtra Chief Minister Eknath Shinde said unsatisfactory performance is the collective responsibility of all Mahayuti parties, but we will not be demoralized by this performance and will discuss with Mr. Fadnavis about his discussion. Praful, since we were just reading about the Maharashtra, you know, Devendra Fadnavis has now offered to put in his papers. He says he wants to focus now on the party because in the, you know, phase of upcoming assembly elections there. How important has become, you know, this whole thing about, because now the BJP is no longer in, right now they have a government, but the elections are, state assembly elections are going to be held in a few months. The rejig in the party, how important is it going to be?
See, if we carefully analyze the presser that Mr. Fadnavis did today, he actually, on the one hand, tried to present the picture about the vote share and the all-over results, and he openly accepted the failure. One important statement that he made in that presser is, we failed in countering the narratives that were built, especially, you know, the reservation related and all those things, and constitution related. And secondly, he said, we didn't anticipate the anti-BJP vote consolidation throughout the state. No, I think that is a very important message that he has given, because the same thing has happened in Uttar Pradesh also. In Maharashtra, many people believe that it is the sympathy thing about Uddhav Thackeray or Sharad Pawar. As I know Maharashtra, I don't think that is the case.
All right.
What has happened essentially is, one, BJP core voter has remained apathetic to the entire voting process because they were not happy. Because remember, BJP is the party which had built huge momentum against Nationalist Congress Party and Mr. Ajit Pawar. So Ajit Pawar coming in this alliance was a very difficult thing. Two, Muslim consolidation was expected. But being Shiv Sena there or Uddhav faction there, because for Mumbai Muslims, especially Mumbai Thane region, Shiv Sena initially was the biggest enemy.
Yes.
The strong Hindutva force. That had changed completely this time. Congress NCP votes completely shifted towards Shiv Sena, plus neutral voters, then 10-12% who are, you know, always on the periphery, undecided voters. They also feel that, you know, oh, this is not the kind of thing that we want.
What?
Now, the third important factor about the consolidation that he was talking about, the general assumption was, whoever went on the ground, even media reports, that BJP by and large will maintain, if at all BJP will face losses, it will be due to the allies, whether Eknath Shinde or Mr. Ajit Pawar. If we see the seats, like, you know, the way Mr. Ujjwal Nikam lost, or even the way, Mr. Kapil Patil, who was, Bhiwandi seat is one seat where, you know, BJP, irrespective of wave or no wave, BJP used to win that seat. Mr. Kapil Patil lost that. He was a sitting Dindori seat near Nasik. Bharti Pawar, sitting MP and minister in the government. So, all these things clearly show that there was something more than just, people have voted there against this experiment.
Mm-hmm.
Now, if we remember 2014, when Mr. Fadnavis became chief minister, and if we analyze the politics 1 year before that, he made a huge inroads for BJP throughout the state. His yatra, his visit to each and every district of Maharashtra. He was party president then. The day he became chief minister, there was a message circulating in Maharashtra. Whose government do you want? Chhatrapati or Peshwa?
Okay.
That was a subtle message. And since then, so you see, on the one hand, this reservation narrative, on the other hand, Maratha reservation narrative, and thirdly, this Muslim consortium. These three factors came together, and then some kind of anti-BJP force. And Ajit Pawar factor has created a sort of apathy for the core BJP voters. So all these things, now if this has to be addressed, frankly speaking, it cannot be addressed with Mr. Eknath Shinde just at the helm of affairs. Somebody has to work on ground. And that's why he has proposed this. But I don't think that is going to happen. Though he will be investing more time in, on the campaign strategy and organizational work.
Yeah.
But still, I think he will continue to be there. To manage the government, somebody like Mr. Fadnavis has to be there.
जी, किसको जी एक छोटा सा सवाल यहाँ पर कि अब बहुत ही नजदीकी समय में कुछ महीनों में चुनाव होने वाले हैं महाराष्ट्र में विधानसभा के, क्या ये महायुति का एक्सपीरियंस वहां पर भी काम करेगा या इससे अलग हटके अब एकला चलो की नीति अपनाएगी भाजपा?
नहीं, मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ तो अलायंस का ये होगा ही, लेकिन महाराष्ट्र में अभी और बहुत कुछ होना बाकी है. इंटरेस्टिंगली, मेरी जहां तक जानकारी है, अजित पवार आज नहीं पहुंचे हैं.
जी,
प्रफुल्ल पटेल को भेजा है शायद उन्होंने. और उधर इंडिया ब्लॉक की मीटिंग में भी मिस उद्धव ठाकरे नहीं पहुंचे हैं. तो महाराष्ट्र अभी बहुत ही फ्लक्स में है. इस चुनाव के बाद
समीकरण
बहुत बहुत उलटफेर होने की संभावना,
आने वाले महीनों में बहुत कुछ हो सकता है.
जी, और अब अपर्णा खुंत अहमदाबाद गुजरात से हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ गई हैं. अपर्णा, सबसे पहले यही बताइए कि अब गुजरात में भाजपा का प्रदर्शन लगभग पिछले चुनावों की तरह ही रहा है, और अब क्या वहां पर राजनीतिक घटनाक्रम आपको देखने को मिल रहे हैं?
जी, भाजपा का जो प्रदर्शन है इस बार वापस बहुत ही दमदार रहा है. 2014 और 2019 में पार्टी ने सभी 26 सीटों के ऊपर जीत हासिल की थी. हालांकि इस बार एक सीट जो है बनासकांठा की उत्तर गुजरात की, वो कांग्रेस ने छीन ली है, और 10 साल के बाद कांग्रेस ने गुजरात में अपना खाता खोला है. लोकसभा के चुनाव में हम देख रहे हैं कि गहराज जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का और गृहमंत्री अमित शाह जी का, तो लोगों ने फिर से एक बार भाजपा के ऊपर जो है विश्वास जताया है. और सारे के सारे केंद्रीय मंत्री, जो 4 केंद्रीय मंत्री यहां से चुनाव लड़े थे, सभी को बहुत ही बड़ी जीत हासिल हुई है. और जो लीड अगर हम देखते हैं तो केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह का जो है 7 लाख से ज्यादा मतों से वो जीते हैं. और भाजपा के जो सीआर पाटिल है प्रदेश प्रमुख, उन्होंने भी बहुत बड़ी जीत हासिल की है. बनासकांठा की अगर हम बात करें तो उत्तर गुजरात में दोनों भी बनासकांठा और पाटन बैठक के ऊपर, मतलब सीट के ऊपर भाजपा को काफी संघर्ष करना पड़ा. शुरुआती जो रुझान थे वो थोड़े कांग्रेस के फेवर में थे, बट उसके बाद धीरे धीरे जो है भाजपा के जो प्रत्याशी है वो पाटन जो सीट है उसके ऊपर जीत पाए. बट बनासकांठा की जो सीट है उसमें जो महिला नेता है कांग्रेस की, उन्होंने अपने खुद के दम पे और व्यक्तित्व के ऊपर वो सीट जीत पाई. जो हैट्रिक का जो भारतीय जनता पार्टी का जो सपना था वो टूट गया है, बट फिर भी हम बोल सकते हैं कि बहुत ही बड़ी जीत उनको गुजरात में हासिल हुई है. अब बनासकांठा जो सीट है उसके ऊपर उपचुनाव होंगे, क्योंकि वो सीट बनासकांठा नहीं, वाव की जो सीट है असेंबली की, जिसमें से गेनीबेन ठाकुर विधायक थी, वो लोकसभा के चुनाव में जीतने के बाद अभी वो सीट के ऊपर उपचुनाव आगे आने वाले समय में होंगे. तो बहुत ही जश्न है भारतीय जनता पार्टी के बीच में. हालांकि गुजरात की एक सीट हारने का थोड़ा दुख भी है, और जो भी कल पार्टी के जो प्रदेश प्रमुख है उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि पार्टी जरूर इसके बारे में सोचेगी. बट अगर हम देखें तो हमेशा की तरह गुजरात को गढ़ माना जाता है भारतीय जनता पार्टी का, तो तो वो जो है गुजरात की इमेज वो बरकरार है इस चुनाव में भी, और बेशक हम कह सकते हैं कि लोगों को आज विश्वास है बीजेपी के ऊपर, वो बरकरार है।
जी अपर्णा, धन्यवाद इस जानकारी के लिए। केतकर जी, गुजरात की बात करें, जैसे कि हमारी संवाददाता भी बता रही थी कि गढ़ पूरी तरीके से बचा के रखा है भाजपा ने गुजरात का अपना, लेकिन इस बार बनासकांठा में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत सेंध लगी है और पाटन में भी बड़ी मुश्किल से जीत पाए हैं भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार। क्या देख रहे हैं कि 10 साल बाद कांग्रेस ने अब की बार वहां खाता खोला है, अब क्या इनरोड्स बनाने की तैयारी में है कांग्रेस वहां पर? कुछ लगता है कि आपको आने वाले समय में कांग्रेस के लिए स्थितियां और अनुकूल होती देखते हैं आप?
नहीं, देखिए गुजरात में हमेशा से एक सेक्शन ऐसा रहा है जो किसी न किसी रीजन से वहां के स्थानिक समीकरणों में भाजपा की किसी एक नीति के विरोध में या सरकार के ऑल ओवर कंपोजिशन के बारे में एक अपना रोष, कभी वो पाटीदार आंदोलन के रूप में दिखा, कभी और किसी आंदोलन में दिखा, ये हमेशा से रहा। लोकतंत्र में ऐसा तो होता नहीं है कि किसी पार्टी का डोमिनेशन है इसलिए सारे वर्ग खुश है, लेकिन ये बनासकांठा की सीट, आप इसको ठीक से समझेंगे तो गुजरात के बिल्कुल उत्तरी सीमा पर है जो राजस्थान से सटा हुआ इलाका है। यहां पे अच्छी खासी संख्या में एक ट्राइबल पॉपुलेशन है, जनजाति का प्रभाव क्षेत्र है, उसका परिणाम हमको राजस्थान में भी दिखा, राजस्थान की सीटों पर भी दिखा। वहां पे ये जो रिजर्वेशन वाला मामला, ये सारा नैरेटिव वहां पे भी कहीं ना कहीं प्रभावित किया होगा। बनासकांठा में एक अच्छी संख्या में मुस्लिम पॉपुलेशन भी है, उसने भी शायद ये किया होगा। बनासकांठा और पाटन यदि ये दो सीटें छोड़ दिए जाए, जो 30,000 के मार्जिन से एक सीट कांग्रेस ने जीती और 35,000 के वोट से एक सीट बीजेपी ने जीती है, उसके सिवा छोड़ दिया जाए तो गुजरात की बाकी सीटों का आप सारा मार्जिन, सूरत की अनअपोज है
जी जी,
बाकी सारी सीटों में मार्जिन जो है वो लगभग लाखों में है, और बीजेपी का ऑल ओवर वोट परसेंटेज आप देखेंगे तो वो 61% है। बहुत बार हम ये और एक चीज भूल जाते हैं कि हरियाणा, दिल्ली के बाहर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का यदि कहीं पे अलायंस था
गुजरात,
तो वो गुजरात में था, और दो सीटें आम आदमी पार्टी को दी भी थी। उसके बावजूद कांग्रेस के पास 31% का वोट शेयर, वो लगभग 31-32% का वोट शेयर कांग्रेस का वो ट्रेडिशनली रहा है, 2% आम आदमी पार्टी को मिला, उसके आगे वो नहीं जा पाए हैं। तो इसलिए मैं इसको बहुत ज्यादा इनरोड्स वगैरह के मामले में नहीं देखता हूं। वहां पे शायद भाजपा को अपना ये देखना पड़ेगा कि स्थानिक समीकरण कहां पे गड़बड़ हुए, कौन से इश्यूज को काउंटर करने में या कन्वे करने में कमी रह गई। बनासकांठा, साबरकांठा और पाटन, ये एक सेंसिटिव बेल्ट रहा है हमेशा, तो इसलिए मुझे लगता है कि ये विश्लेषण होगा, क्योंकि गुजरात है, प्रधानमंत्री और गृहमंत्री दोनों गुजरात से आते हैं, और वहां पे एक भी सीट हारना ये मतलब ये सिंबलिकली एक ये होता है, इसलिए मुझे लगता है कि उसके बारे में अधिक विश्लेषण किया जाएगा।
प्रफुल्ल, इफ वी टॉक अबाउट द बीजेपी ओवरऑल, यू नो द लॉस दैट इट हैज 240 सीट्स एंड द मोस्ट ऑफ इट इज बिकॉज ऑफ यू नो द लॉस दैट इट इनकर्ड इन उत्तर प्रदेश, राइट? सो उत्तर प्रदेश, देन महाराष्ट्र, बंगाल, even to a certain extent Haryana were the and Rajasthan that where you know these were the states, major states where the losses that this party incurred is what led to you know it's just being limited to 240. If we look at you know on the other side, places like Madhya Pradesh, states like Madhya Pradesh, all 29 seats there. Gujarat, as we were discussing, 25 out of 26 seats. Chhattisgarh, where 10 out of 11 seats were won. Assam, 9 out of 14. So if we look at those states which actually were you know contributed a lot into the 240 number, what was it that went right in these places vis-a-vis the you know other side?
No, you can include Himachal and
Himachal also, yes.
Uttarakhand also.
Yes, Uttarakhand and Himachal as well, where there's a clean sweep.
See, it's very simple. Organizationally, where BJP has been strong and organizationally all energies are put in right place, the state unit was involved in the campaign process right from the you know decision of the candidates, there BJP has performed well. When it comes to, of course, the state-wise we will have to see what were the factors.
Yes.
But what I have got from Haryana and Rajasthan, for example, that somewhere this, caste dynamics have played a critical role, especially post-farm laws, the narratives among Jat. Interestingly, the same Jat community has stood by BJP.
Yes.
In Western Uttar Pradesh. But all over, BJP failed in countering the anti-incumbency against the sitting MPs.
Okay.
So it is more than, vote against Prime Minister Modi and his policies or decisions. It is the sitting MPs that faced the anti-incumbency.
You brought in a very interesting point about, that it was more of to do with the anti-incumbency against the sitting MPs rather than Prime Minister's image. Mm-hmm. We'll come to that later. Mm-hmm. But
Jitendra Divadi, hamare Rajasthan se sambhadata jod gaye hai. Jitendra, results hamne dekhe, matgarna ke parinam bhi hamare saamne hai, ab chunav natije aa chuke hai. Rajasthan mein 11 seatein NDA gathbandhan ko gayi hai aur NDA ko 14 seatein gayi hai. कांग्रेस का या कहें कि इंडी गठबंधन का जो प्रदर्शन वहां पर रहा है, किस तरीके से आप देख रहे हैं उसको वहां?
देखिए, निश्चित रूप से इंडी गठबंधन को बड़ी सफलता मिली है, क्योंकि पिछले दो चुनाव में 2014 के और 2019 के चुनाव में बीजेपी ने क्लीन स्वीप एक तरफा बढ़त हासिल की थी दोनों चुनाव में. तो इस बार इंडी गठबंधन ने बड़ी सफलता ली है. इसके पीछे कारण क्या रहे हैं, इन बातों पर भी तेजी से चर्चा हो रही है. मैं मानता हूं कि सबसे पहला कारण ये रहा कि कांग्रेस ने क्षेत्रीय दलों से समझौता किया. दूसरी तरफ वो नरेटिव बनाने में कामयाब रहे कि इस बार उनको बढ़त मिल रही है. तीसरी बात, तो उन्होंने अपने जो कार्यकाल था कांग्रेस के कार्यकाल में जो स्कीम्स चलाई उनका भी अच्छे से प्रचार किया, जबकि जो नई भाजपा की सरकार बनी है राज्य में उसको इतना समय नहीं मिल पाया कि वो अपने कामों को दिखा सके या उसके बारे में नरेटिव सेट कर सके. साथ ही साथ कई अन्य कारण भी रहे जिसके कारण कि इंडी गठबंधन को 11 सीटा मिलने में इंडी गठबंधन सफल रहा.
Thank you so much for that update, Jitendra. Praful, I would want to ask you, because we're talking about Rajasthan and Congress has done very well. And like he was saying that, the Congress was able to cash in on the schemes that it implemented during its, during its rule, whereas the BJP has not had that much time. Do you also think, one of the reasons, because while it was in government, in power in Rajasthan, there was a lot of internal struggle going on, at that point of time. They were able to bury those, that what was happening during that time.
जी, एक बात और मैं इसमें जोड़ना चाहूंगा कि विधानसभा चुनाव में जो अभी हाल ही में जीत मिली थी राजस्थान में भाजपा को, क्या उसका फायदा पार्टी पूरी तरीके से उठा नहीं पाई?
देखिए, एज अनुभव वॉज आस्किंग, दैट टाइम कांग्रेस वॉज फेसिंग द इंटरनल स्ट्राइक.
यस,
मिस्टर गहलोत एंड मिस्टर पायलट. दोज नाउ मिस्टर पायलट इज एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स, ही इज लीडिंग द पार्टी. So there is a more coherent. Gehlot is almost out of picture. So there is no baggage of his policies. There is no baggage of the caste equations also.
Right.
I think, again, I'm bringing back to the same point. As BJP has lost Banaskantha in North Gujarat.
Right.
BJP has also lost Baswara in South Rajasthan. And there, Bharat Adivasi Party has won by more than 2 lakh margin. Again, a tribal belt. So, Ganganagar BJP has lost. This seat of Barmer, which was talked about, and Ravindra Bhati contested as an independent candidate and he actually gave the fight. So, it clearly shows that internally there may not be very coherent strategy as far as the campaign is concerned for the BJP, and therefore BJP will have to have more coherent approach. I don't think because the similar kind of government was changed in both in Chhattisgarh,
yes,
and Madhya Pradesh,
yes,
also.
Exactly.
So I don't think it is the role of the state government that has changed. Wherever the candidates were repeated, their connect with the people, this assumption that everywhere, every time, because this was not an election of a national level coherent narrative, either around national security, nationalism,
yes,
or change, as Prime Minister Modi did in 2014 or 2019. Beyond a point, Prime Minister Modi is contesting on every seat. That kind of thing would not work. And that perhaps Rajasthan has shown.
Right.
Rajasthan mandate is very clear that the, and to some extent it is true even in Haryana and Uttar Pradesh, that the local sitting MPs have to perform and they have to stay connected with their roots. They have to stay connected with their electorates. They cannot be just talking about and expecting Prime Minister
Modi to
come and, you know, do everything for them.
Right. And now it's time to go over to Vijayawada, where our correspondent Sai Vanpati is with us. Sai, welcome to the program. Andhra Pradesh, we saw a clean sweep by NDA, almost a clean sweep. NDA has won 21 seats. You know, that is the BJP and Janasena party and the TDP fighting in conjunction. And of course, Andhra Pradesh, there were assembly elections as well, where the TDP again has swept. What is the latest you have in terms of, you know, what is happening on the ground in terms of a state government being formed?
Good evening, Anubha. As you said, it's a clean sweep here. The TDP chief Chandra Babu Naidu and the Janasena chief Pawan Kalyan are in New Delhi right now attending the NDA meeting. So as of now, there is no clarity on when the government will be formed. The media reports suggest that somewhere around 9th, the government formation will happen. Meanwhile, the governor of Andhra Pradesh has dissolved the 15th state legislative assembly and Jagan Mohan Reddy is continuing as the caretaker chief minister. After this historic mandate, obviously the party cadres are in celebratory mode, especially the ones from Rayalaseema, where the TDP party saw, you know, the tables turning in their favor this time. And also the Amaravati, where the farmers who have given their land for the Amaravati capital in the land pooling, they have called off their agitation, which they have been running since the last 5 years. So all in all, the Amaravati region is bustling with a lot of activity, with lot of interest in the Amaravati region, as it is going to be the new capital city here.
Thank you for that update of empathy.
जी केतकर जी, आंध्र प्रदेश की बात करें तो एनडीए का वहां जादू इस बार चल गया और जो जो चंद्रबाबू नायडू ने सत्ता में फिर से वापसी की है, तेलुगु देशम पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और जनसेना, ये जो गठबंधन हुआ, ये क्या बहुत आपको लगता है कि इसने सबसे ज्यादा असर डाला और वाईआरसीपी 11 सीटों पर केवल सिमट गई? अगर हम विधानसभा चुनाव के नतीजों की बात करें, ये गठबंधन जो है, क्या वहां की जनता, आंध्र प्रदेश का वोटर जो है, ये इस इंतजार में था कि ऐसा कोई गठबंधन हो जिसको कि हम जिसकी तरफ जा सकें? क्या वाईआरसीपी से कुछ नाराजगी थी, जगनमोहन रेड्डी से कुछ नाराजगी थी वोटरों में वहां पर?
देखिए विशाल जी, ऐसा है कि 10 साल के बाद तो एंटी इनकम्बेंसी थी ही, एक करप्शन का इमेज था, हालांकि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जैसे स्टेट में बहुत बड़ा इशू कभी नहीं बनता है, लेकिन वो एक इमेज था। लेकिन उसके साथ साथ मुझे जो लगता है कि पिछले चुनाव का यदि आप विश्लेषण करेंगे तो आपको ध्यान में आएगा कि जनसेना पार्टी पवन कल्याण की, उस समय उन्होंने भी यात्रा निकाली थी, जैसे वाईएसआर ने पहले निकाली थी, सॉरी जगन ने जैसे निकाली थी, उसके बाद तो लगभग लोकसभा की 7 से 8 सीटें ऐसी थी टीडीपी केवल जनसेना पार्टी के कारण हारी थी 2019 के चुनाव में। दूसरी और एक महत्वपूर्ण बात, यदि आप इक्वेशन का ध्यान रखेंगे तो वहां पे कम्मा, कपू और जो बाकी प्रकाश, इनका एक सॉलिड इक्वेशन जो बना इन तीनों के इकट्ठा आने के कारण, रायलसीमा का और ये जो, क्योंकि जगन रेड्डी ने आने के बाद अमरावती प्रोजेक्ट सबसे पहले एक तरीके से बंदे ठंडे बस्ते में डाल दिया। आंध्रा जब अलग हुआ तेलंगाना से और हैदराबाद से अब हम नहीं जुड़े हैं, तो आंध्रा एक आइडेंटिटी के लिए दिख रहा था, जो आज तेलंगाना में हैदराबाद और साइबराबाद, वो बनाने का क्रेडिट एक तरीके से चंद्रबाबू नायडू को जाता है
जी।
हालांकि उसके कारण उनको ग्रामीण क्षेत्र में उस समय कुछ रोष झेलना पड़ा था, लेकिन आप हिस्टोरिकली ध्यान में रखिए, जब जब बीजेपी के साथ चंद्र